समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। गणतंत्र दिवस काफी नजदीक है और शायद ये पंक्तियां इस महीने में हमें खूब याद आती हैं। लेकिन श्रोताओं, देशभक्ति कोई एक दिन की भावना या विचार नहीं है, ये तो हर दिन हर पल देश प्रेम के साथ मर मिटने का जज्बा है। हर दिन राष्ट्र के लिए योगदान देने का अवसर है। तो आज इस क्षण, इस महीने ही नहीं बल्कि देशभक्ति की भावना को हर दिन जिएं और हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको, आपके राष्ट्र को ऊंचा उठा सके। इसी के साथ ही आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की इस खूबसूरत सुबह में आपके साथ मैं हूँ आकर्षिता सिंह और मेरे साथ है मेरी को होस्ट रेणु कटारिया। रेणु, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार एंड हेलो आकर्षिता एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। एंड डियर लिसनर्स, एज एवरी डे टुडे आल्सो वी विल बी ब्रिंगिंग यू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम वेयर इन वी आर गोइंग टू गिव यू द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, दैट इज द 20th ऑफ January. So let's begin with the news headlines first, Akarshita.
Ji.
Prime Minister Narendra Modi and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan have condemned terrorism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. Both the leaders emphasized that no country should provide safe haven to those who finance, plan, support or commit terrorist acts. Both leaders agreed to continue cooperation within the framework of the Financial Action Task Force to counter terror financing and strengthen anti-money laundering efforts. They also directed their teams to work towards connecting micro, small and medium sector enterprises. They called for the expeditious implementation of key initiatives such as the Bharat Mart, the Virtual Trade Corridor and the Bharat Africa Setu to promote MSME products across the Middle East, West Asia, Africa and the Eurasia region. The two leaders expressed satisfaction on bilateral energy partnership and underscored the UAE's contribution to countries' energy security. The leaders also welcomed the enactment of the Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India or Shanti Law, noting that it creates new opportunities for enhanced civil nuclear cooperation.
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन पार्टी के नए अध्यक्ष होंगे। पार्टी के नेशनल रिटर्निंग अधिकारी डॉ के लक्ष्मण ने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए केवल नितिन नबीन का नाम प्रस्तावित किया गया है। हालांकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की औपचारिक घोषणा आज की जाएगी। श्री लक्ष्मण ने बताया कि नितिन नबीन के पक्ष में नामांकन पत्रों के 37 सेट प्राप्त हुए हैं। जांच में सभी नामांकन पत्र निर्धारित प्रारूप में विधिवत भरे हुए और वैध पाए गए हैं।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और भाजपा की संसदीय पार्टी बोर्ड के अन्य सदस्यों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नबीन के नाम का प्रस्ताव रखा। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी की राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषदों के प्रतिनिधियों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। वर्तमान में यह पद केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के पास है। श्री नड्डा को जून 2019 में भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और बाद में जनवरी 2020 में उन्हें निर्विरोध पार्टी अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने उस समय के अध्यक्ष अमित शाह का स्थान लिया था। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
India has achieved a record electronics exports of $47 billion in 2025. In a social media post, Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnaw informed that around $30 billion came from the production-linked incentive-driven smartphone exports. He said that electronics is the third largest export item of the country. The minister further said that electronic exports has increased 11 times since 2015. He added that 25 lakh new jobs were also created with strong women participation, opportunities for MSMEs and long-term skilling of the youth.
रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस वर्ष नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाली 77वीं गणतंत्र दिवस परेड के लिए लगभग 10,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इनमें आय और रोजगार सृजन में उल्लेखनीय कार्य करने वाले सर्वश्रेष्ठ नवप्रवर्तक, स्टार्टअप्स, स्वयं सहायता समूह और विभिन्न सरकारी पहलों के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोग शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि इन अतिथियों को राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए सम्मान देने और राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों में जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से आमंत्रित किया गया है। विशेष अतिथियों में विश्व एथलेटिक्स पैरा चैंपियनशिप के विजेता, पीएम स्माइल योजना के तहत पुनर्वासित ट्रांसजेंडर और भिक्षुक, प्राकृतिक खेती करने वाले किसान आदि शामिल हैं।
Indian Navy ship INS Sudarshini will embark on a 10-month transoceanic expedition on the voyage of Lokayan 26 today. Defence Ministry said that the ship will sail over 22,000 nautical miles, visiting 18 foreign ports across 13 countries during the voyage. It will participate in a scale ascent in France and sail 250 in New York, USA. Over 200 Indian Navy and Indian Coast Guard trainees will undergo intensive sail training, gaining invaluable experience in long-range ocean navigation and traditional seamanship at sea. The naval ship will also participate in training interactions and maritime partnership engagements with the navies of visiting countries. This will strengthen maritime cooperation and advance the vision of mutual and holistic advancement for security and growth across regions or Mahasagar. And moving on to sports, the 6th edition of Khelo India Winter Games will kick off from today in Leh city of Ladakh Union Territory. 21 states and union territories will compete in ice sporting events, hockey and skating with 1,000 participants, which includes 472 athletes. Our Leh correspondent has filed this report.
Figure skating, an Olympic sport, has been introduced from this edition in addition to the existing speed skating and short track skating. National level Khelo India Winter Games is being organized under the Khelo India scheme since 2020, and Ladakh has been hosting it ever since it constituted the game. Ice hockey event will be held at India's Ice Hockey Stadium and Ice Hockey Ring of Ladakh's Co-Regimental Center in Phyang, while Gupuk Frozen Pond has been selected for ice skating events. Ahead of the event, Lieutenant Governor Kavinder Gupta yesterday visited all three venues and reviewed all the arrangements. He directed to ensure seamless and flawless Khelo India Winter Games 2026 and zero inconvenience to the participants. Yangchen Dolma for Akashwani from Leh Ladakh.
And India Meteorological Department, IMD, has forecast dense to very dense fog conditions to prevail in the morning and night hours in isolated pockets over Punjab till tomorrow. The weather agency also predicted dense fog condition at isolated places over Bihar, Haryana, Chandigarh and Delhi and Punjab today. The weather agency said that cold wave conditions are expected in Himachal Pradesh today.
आज सवेरे में अब प्रमुख महानगरों से जुड़ी प्रमुख खबरें और अब चेन्नई की खबरों के साथ हैं रेणु।
थैंक यू आकर्षिता। The State Directorate of Drugs Control has issued an alert against a batch of Almond Kid Syrup as test found toxic chemical ethylene glycol contamination. The state banned the sale, purchase and consumption of batch number AL24002 manufactured by Tridus Remedies based in Bihar and ordered its immediate withdrawal from pharmacies and hospitals. Drugs Control Deputy Director has said that there was no supply of the drug within the state. More news. Greater Chennai Corporation has collected and disposed of 70.5 tons of old household items from across the city so far. A release said that the waste was collected from 1,871 residents under its weekly initiative. The initiative, started on October 11, 2025, allows residents to hand over bulky waste every Saturday after prior registration. Residents can book the service through the Nama Chennai app by calling the 1913 helpline. Aur ek aur news hai Chennai se hi, Akarshita. The Central Industrial Security Force is set to launch the second edition of the CISF Vande Mataram Coastal Cyclothon 2026, a landmark national initiative aimed at strengthening coastal security awareness, national unity and community participation. The Inspector General and DIG said that the Union Minister of State for Home Affairs, Nityanand Rai, will virtually flag off the CISF Vande Mataram Coastal Cyclone 2026 on 28th of this month from the Major Dhyan Chand National Stadium, New Delhi. He said that India's vast coastline is home to over 250 ports, including 72 export-import ports that handle nearly 95% of the nation's trade. These ports, along with refineries, shipyards and nuclear power plants located along the coast, are critical to India's economic growth and energy security. However, they also face persistent threats such as smuggling of drugs, arms, explosives, infiltration and other illegal activities. For over five decades, CISF has been entrusted with safeguarding 12 major ports and other critical infrastructure along the coast.
और अब खबरें दिल्ली से।
जी,
मेरा युवा भारत पहल के तहत आयोजित कश्मीरी युवा विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के 6 जिलों से आए 170 युवाओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने कल दिल्ली विधानसभा का भ्रमण किया। ये कार्यक्रम युवा कार्य और खेल मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। इस दौरान युवाओं को विधायी प्रक्रिया, प्रश्नकाल, बहस और लोकतांत्रिक शासन में जनप्रतिनिधियों की भूमिका की जानकारी भी दी गई। दिल्ली पुलिस राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर 26 जनवरी तक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इस कार्यक्रम के तहत की जाने वाली प्रस्तुतियों में विरासत, सद्भाव और मातृभूमि का जश्न मनाया जा रहा है। इस 8 दिन तक चलने वाले प्रस्तुति में देशभक्ति बैंड की लाइव प्रस्तुतियां होंगी। इस दौरान प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से शहर भर में 10 से अधिक स्थानों पर ये प्रस्तुतियां की जाएंगी। इनमें INA मार्केट, साकेत, रोहिणी, चाणक्यपुरी, चांदनी चौक और अन्य स्थान शामिल हैं। तो हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि अगर वो आसपास कहीं भी रहते हैं तो इस राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम में जरूर भाग लें और एक 26 जनवरी से आने से पहले का जो माहौल है उसको भी सेलिब्रेट करें।
बिल्कुल आकर्षिता, वेरी वेल सेड। सो शैल आई मूव ऑन टू बेंगलुरु और यू हैव मोर न्यूज़ फ्रॉम दिल्ली?
मेरे पास एक और खबर है दिल्ली पुलिस की कि दिल्ली पुलिस ने पुलिस कार्यस्थलों को अधिक जेंडर सेंसिटिव और सम्मानजनक बनाने के उद्देश्य से स्वाभिमान पहल की शुरुआत की है। इस पहल के तहत महिला कर्मियों के लिए अनुकूल वातावरण, मेंस्ट्रुअल हाइजीन सुविधाएं और जेंडर इंक्लूसिव कार्य संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा।
जी बिल्कुल। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू बेंगलुरु। Karnataka Chief Secretary Dr. Shalini Rajneesh has said that Karnataka has integrated outcome budgeting, performance indicators, digital monitoring systems and real-time data dashboards to align public expenditure with measurable development outcome. She was speaking at the one-day seminar on need, evidence and outcome-based policy and planning organized by Karnataka State Policy and Planning Commission in Bengaluru yesterday. Dr. Rajneesh pointed out that strong digital infrastructure and e-governance platforms developed in the state provide real-time monitoring, data integration and performance tracking. She added that the decentralized planning, digital monitoring and outcome budgeting provide a strong foundation for sustained progress as the state is well-positioned to emerge as a model for results-oriented and citizen-centered development, where policies not only address needs but also deliver tangible, transformative outcomes for all the sections of the society. So let's hear in what do we have from Mumbai Metro, aapse Akarshita.
Ji. महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में महापौर पदों के लिए आरक्षण का फैसला 22 जनवरी को मुंबई स्थित राज्य सचिवालय में लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। ये प्रक्रिया शहरी विकास राज्य मंत्री की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे शुरू होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण की घोषणा भी की जाएगी। पश्चिमी रेलवे के अनुसार मुंबई उपनगरीय खंड में कांदीवली और बोरीवली के बीच छठी रेलवे लाइन का उद्घाटन किया गया है। एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 3,210 किलोमीटर लंबी इस लाइन का उद्घाटन रविवार को पश्चिमी सर्कल के रेलवे सुरक्षा आयुक्त ई श्रीनिवास द्वारा किए गए सफल परीक्षण और गति परीक्षण के बाद किया गया। वहीं महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बताया है कि दहिसर मीरा भयंदर मेट्रो सेवा अगले महीने से शुरू होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि मुंबई मेट्रो लाइन 9 का काम अंतिम चरण में है और फरवरी की शुरुआत में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों के बाद सेवा शुरू हो जाएगी। मेट्रो से यातायात जाम में कमी आएगी और कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा। वहीं यूनिसेफ युवा को 17 से 19 फरवरी तक आयोजित होने वाले मुंबई जलवायु सप्ताह 2026 के लिए आधिकारिक युवा सहभागिता भागीदार नामित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य कैंपस रोड शो, नवाचार चुनौतियों और नीतिगत सहभागिता के माध्यम से जलवायु कार्रवाई में युवाओं की आवाज को बुलंद करना है।
एंड लेट्स मूव ऑन टू हैदराबाद। In Telangana, AIIMS BB Nagar has inaugurated advanced medical and academic facilities worth over 5.4 crore rupees under the Corporate Social Responsibility or CSR initiative of Indian Oil Corporation Limited. This marks a major boost to tertiary healthcare and medical education in the state as part of the CSR initiative. An automated robotic assisted surgery system was launched to enable precision based advanced surgical care, particularly benefiting patients from economically weaker sections. In addition, a high fidelity adult patient simulator was inaugurated to enhance simulation based clinical training for undergraduate and postgraduate medical students as well as nursing students aimed at improving patient safety and clinical skills.
और अब बात करते हैं कोलकाता की खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी को मालदा टाउन स्टेशन से हावड़ा कामाख्या वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया था। ये पश्चिम बंगाल और असम के बीच रेल संपर्क में एक महत्वपूर्ण सुधार का प्रतीक है। ये नई वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस 22 जनवरी से कामाख्या से और 23 जनवरी से हावड़ा से नियमित रूप से चलना शुरू कर देगी। हावड़ा कामाख्या सेवा के लिए टिकट बुकिंग आज से शुरू हो गई है। और आइए अब जानते हैं महानगरों के मौसम का हाल। सबसे पहले दिल्ली का मौसम। दिल्ली में सुबह के समय कोहरा रहेगा, जो कि हमने देखा थोड़ा बहुत हल्का था, उतना ज्यादा धुंध नहीं थी जितना कि कल थी। और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वहीं मुंबई में आज मौसम साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 31 डिग्री और अधिकतम तापमान 18 डिग्री रहने की संभावना है। कोलकाता में सुबह हल्की धुंध रहेगी और बाद में आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 13 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहने का अनुमान है। और आइए अब जानते हैं चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के मौसम का हाल रेणु से।
थैंक यू आकर्षिता। चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव फॉग और मिस्ट इन द मॉर्निंग एंड पार्टली क्लाउडी स्काई लेटर। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 20 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 30 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव मिस्ट, द मिनिमम टेम्परेचर वाज 15 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 29 डिग्रीज। And Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between a minimum of 17 degrees and a maximum of 32 degrees Celsius.
और आइए अब जानते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या क्या खास हुआ।
Yes, we are talking about the day 20th January. So on this day in 2011, mobile number portability services were officially launched in India.
और गुरुदत्त की फिल्मों कागज के फूल चौधरी का चांद और साहब बीवी और गुलाम आदि को फिल्माने वाले सिनेमेटोग्राफर वी के मूर्ति को 2010 में प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया। और रेणु, क्या आप जानती हैं कि ये क्यों बहुत खास है आज का दिन? क्योंकि ये पुरस्कार पहली बार किसी सिनेमेटोग्राफर को दिया गया था।
वेरी ट्रू आकर्षिता, वी रियली हैव टू वॉच दीज मूवीज टू नो कि उन्हें ये किस लिए दिया गया था और उनका क्या काम था। सो पीपल हु हैव नॉट वॉच्ड गुरुदत्त मूवीज, प्लीज डू watch them, if not for anyone, for the cinematographer V.K. Murthy. So, in the year 2006, on this day, NASA launched the New Horizons spacecraft for more information about Pluto. In 1817, on 20th of January, Hindu College in Kolkata was established by prominent figures like Raja Ram Mohan Roy. In 2018, India won the Blind Cricket World Cup for the second time in a row, and in 1957, first Indian atomic reactor Apsara was dedicated to the nation on this day.
और आज के दिन ही 1958 में अंटार्कटिका को पार करने के मिशन के साथ में आज की दिन ही खोजी दल साउथ पोल पर मिला था। ये अंटार्कटिका को सतह से पार करने का पहला प्रयास था। वहीं आज के दिन ही बोलीविया पेरू की संयुक्त सेनाओं को 1839 में चिली ने पराजित किया था। और आइए बात करते हैं उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
Yes, sorry, carry on, Akarshita. I'm so excited because the personality that I'm going to talk about is one of the greatest heroines and the most glamorous and iconic
so
heroines
true.
of हॉलीवुड। लेकिन पहले आप प्लीज शुरू कीजिए।
मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ, परवीन बॉबी की। आज हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री परवीन बॉबी की पुण्यतिथि है। परवीन बॉबी ग्लैमरस भूमिकाओं के लिए जानी जाती थी। 1970 और 80 के दशक में सिल्वर स्क्रीन पर अपनी सुंदरता का जलवा बिखेरने वाली परवीन बॉबी की ज्यादातर फिल्में सुपरहिट रही। उन्होंने दीवार, अमर अकबर एंथनी, नमक हलाल जैसी हिट फिल्में दी। परवीन बॉबी ने अपने करियर में लगभग 55 फिल्मों में काम किया और 1976 में वे प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन के कवर पेज पर भी जगह पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बनी। तो आइए सुनते हैं उनकी फिल्म शान से ये गीत।
She is most remembered for her appearances in popular commercial films and playing mostly glamorous roles alongside top heroes of the 1970s and early 1980s. Regarded as one of the most glamorous actresses in the history of Indian Hindi cinema, Praveen Babi was also one of the highest paid actresses of her time alongside Zeenat Aman and Rekha. But here we have one more song for her. You know what, Akarshita, another most iconic and glamorous actress of Hollywood, jinki death anniversary aaj hai, is Audrey Hepburn, who was a British actress and humanitarian, recognized as a film and fashion icon. She was ranked by the American Film Institute as the third greatest female screen legend in Golden Age Hollywood and was inducted into the International Best Dressed List Hall of Fame. और अगर हम उनकी मूवीज की बात करें तो रोमांटिक कॉमेडी रोमन हॉलिडे अलोंग साइड ग्रेगरी पेक, फॉर विच शी वॉज द फर्स्ट एक्ट्रेस टू विन एन ऑस्कर, अ गोल्डन ग्लोब अवार्ड एंड अ बाफ्टा अवार्ड फॉर अ सिंगल परफॉर्मेंस। हियर वी आर गोइंग टू लिसन टू अ क्लिप फ्रॉम द मूवी सबरीना। यू नो सबरीना, अगर हम इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो शी इज द डॉटर ऑफ द फैमिली शोफर हु रिटर्न्स फ्रॉम पेरिस, all grown up and glamorous, and the stage is set for some family fireworks and the brothers fall under the spell of Hepburn's delightful charms. To yahan pe thoda sa hum ek clip sun lete hain jisme inke bare mein hum aur bhi bahut kuch janenge. So let's listen in to this beautiful clip.
Well, hello, how are you?
Well, I'm fine, how are you? And I might add, who are you?
Who am I?
Am I supposed to know?
Come to think of it, no, you're not supposed to know.
Are you stranded?
My father was supposed to pick me up, but something must have happened.
Whoever your father is and whatever happened, I'll be eternally grateful. That is, if I can give you a lift.
You certainly can. You can drive me home.
Good. I'll get your bags. We must be neighbors. And if there's one thing I believe in, it's love thy neighbor.
Oh,
आज पश्तूनी समाज सुधारक और अहिंसक स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान की पुण्यतिथि है। उन्हें सरहदी गांधी या बाचा खान के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने महात्मा गांधी से प्रेरित होकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती दल नामक संगठन की स्थापना भी की, जो अहिंसा और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए समर्पित था। उन्होंने ब्रिटिश शासन का विरोध किया, विभाजन का विरोध किया और शिक्षा, सादगी तथा मानवाधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उन्हें 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और आज ही भारत के जाबाज सैनिकों में से एक लांस नायक करम सिंह की पुण्यतिथि है। उन्हें 1948 के भारत पाकिस्तान युद्ध में टिथवाल की लड़ाई में असाधारण वीरता के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। टिथवाल की लड़ाई में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक अग्रिम चौकी रिज मार्ग गली का नेतृत्व किया, दुश्मन के कई हमलों को विफल किया, घायल होने के बावजूद अपने साथियों को बचाया और अकेले ही 2 घुसपैठियों को मार गिराया। वे परमवीर चक्र पाने वाले पहले जीवित भारतीय सैनिक थे। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में भी सैन्य पदक जीता। वे 1947 में स्वतंत्रता के बाद तिरंगा फहराने वाले 5 सैनिकों में से एक थे।
Today we are remembering Etta James, who was an American singer, performed in various genres including blues, R&B, soul, rock and roll, jazz and gospel. She won 6 Grammy Awards and 17 Blues Music Awards. And you know what, Akarshita? We just don't listen to Etta, we feel her sing. तो यहाँ पे एक ऐसा गाना हम सुनाएंगे अपने listeners को जो कि वो वाकई उस feeling को ले सकते हैं. So we are going to listen to Something's Got a Hold on Me, sung by Etta James.
आज हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान गायक, संगीतकार और अभिनेता कृष्णराव गणेश फुलंब्रीकर की जयंती है। वे ख्याल और ठुमरी गायन के विशेषज्ञ थे। उन्होंने कई लोकप्रिय मराठी नाटकों जैसे मेनका, सावित्री, कान्होपात्रा और कुलवधू के लिए संगीत तैयार किया। उन्होंने धर्मात्मा, गोपाल कृष्ण, आदमी और पड़ोसी जैसी प्रसिद्ध मराठी और हिंदी फिल्मों में संगीत दिया। उन्होंने भक्तिचा मला नाटक में भी अभिनय किया। उन्होंने वंदे मातरम गीत की एक प्रसिद्ध धुन भी तैयार की थी और भारत सरकार ने उन्हें 1971 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। तो आइए सुनते हैं उनकी फिल्म से ये गीत।
Today is the birthday of David Keith Lynch, who was an American filmmaker, painter, musician, actor and photographer. He's best known for films such as Eraserhead, Blue Velvet and Mulholland Drive. But we are going to hear him speak about his favorite movies and films, Akarshita. And you know what? He also received an Academy Honorary Award, his first Oscar win in the year 2019. So here, let's listen him speak about his favorite movies and filmmakers.
I love Stanley Kubrick, and I can watch his movies over and over. I love Billy Wilder, Sunset Boulevard in particular, and I've watched it over and over. I love this film. I love the world that Billy Wilder created.
आज प्रसिद्ध नाटककार, रंगमंच निदेशक और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पूर्व निदेशक रतन थियम का जन्मदिन है। इन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ कई नाटकों का निर्देशन भी किया। उन्होंने अनेक भारतीय और विदेशी नाटकों का मंचन करने के साथ साथ भास के दो नाटकों कर्णभारम और उरु भंगम का मंचन भी किया। ये सुनते हैं उनके नाटक चक्रव्यूह से कुछ अंश। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए आकर्षिता और रेणु को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं पर समाप्त करने की।
थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे।
नमस्कार।